सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं सिद्धमनन्तमणिन्द्रिय मणुव मम पथसौखमणवज्रम् केवलपहोहणिज्य दुन्नयतिमिरं जिनं नमः। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी थी, जिसके कर्ता बुद्ध बलि और पुष्पदंत आचार्य है, और जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार यह रचना की थी, और यह उपदेश हमें भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। यहाँ हम 563 पृष्ठ पर आए हैं। सबसे पहले हमने गुणस्थानों में सभी आलाप देखे थे, 20 प्ररूपणाएं देखी थी गुणस्थानों के आलाप में, उसको ओघालाप कहा था। अब यहाँ मार्गणाओं में अभी हम 20 प्ररूपणाएं लगा रहे हैं, उसमें गति मार्गणा में क्रम से पहले नारक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और अब देव गति की बात चल रही है। तो उसमें हमने सामान्य देव यानी सभी देव, उसमें कोई डिफरेंस किए बिना सभी देवों के भी आलाप देखे, सामान्य पर्याप्त अपर्याप्त। उसके बाद भवनत्रिक के भी देखे हमने, सामान्य पर्याप्त अपर्याप्त, और उसमें गुणस्थान भी लगाए थे। सौधर्म और ईशान वालों के भी हमने कल देखे थे। अब यहाँ सनत कुमार और महेंद्र के आलाप लगेंगे, सनत कुमार महेंद्र के, उसके सामान्य आलाप। हाँ, तो पहले दूसरे का नाम है सौधर्म ईशान, सनत कुमार महेंद्र ने तीसरा चौथा स्वर्ग। अश्विन भी आप लगाएंगे? हाँ हाँ, गुणस्थान 1 से 4, संगी पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों, हाँ पर्याप्ति 6, पर्याप्ति 6 अपर्याप्ति, प्राण 10 7, 4 संज्ञा, देवगति 1, पंचेंद्रिय त्रस्काय, हाँ योग 11, पुरुष वेद भी 1। देखो हमने देखा था देवांगनाएं पहले दूसरे पहले स्वर्ग में नीचे उत्पन्न होती है और बाद में, तो वो उनकी वो सनत कुमार नहीं कहलाएगी, वो पहले स्वर्ग की कहलाएगी। पहले दो स्वर्गों में ही उत्पन्न होती है देवांगनाएं, उसके आगे देवांगना जाती तो है, वहां के देव आके इसको कहते हैं नियोगिनी देवी, उनकी देवी अपनी अपनी देवी को ले जाते हैं, परंतु हाँ नियोगिनी कहलाती है, निश्चित जो है उनकी अपनी अपनी जो निश्चित देवी है तो उनको लेके जाते हैं, परंतु वो देवी पहले दूसरे स्वर्ग की कहलाएगी। क्यों? उनकी जो लेशा है, उनकी जो शरीर यानी आयु जितनी है वो सब पहले स्वर्ग के देवियों के साथ मैच होती है। भले वो ऊपर भी जाएगी तो ऊपर के स्वर्गों जैसे उनके लेशा वगैरह नहीं होगी, इसलिए वो नीचे की ही कहलाएगी। क्या? हाँ, पर पहले स्वर्गों में ही है। तो यहाँ सनत कुमार महेंद्र से आगे अब पुरुष वेद एक ही लगाना, 4 कषाय, हाँ 3 कूद ज्ञान और 3 सूद ज्ञान, और संयम, हाँ दर्शन 3, लेशा, हाँ कापोत और शुक्ल अपर्याप्त में, और पर्याप्त में तेज और पद्म, इसलिए वो मिला के 4 कहेंगे, है ना? पर्याप्त में तेज और पद्म द्रव्य की भी, और अपर्याप्त में कापोत और शुक्ल, इसलिए द्रव्य की 4 हो जाएगी, और भाव में तेज और पद्म, भव्य भव्य दोनों सम्यक मिथ्यात्व को छोड़ा पर्याप्त अपर्याप्त दोनों है ना, सामान्य आलाप है तो छह सम्यक पे लेना। हाँ, संगी है, आहारक अनाहारक दोनों है और उपयोग भी दोनों। देखिए यहाँ अभी हमने पहले देखा ना लेशा कौन सी होती है सनत कुमार महेंद्र की, हमने 536 पृष्ठ पर देखा था, है ना 536 पर ही देखा था ना। हाँ देखो 536 पर जो विशेषार्थ लिखा है उसमें तीसरी लाइन सनत कुमार महेंद्र इन दो स्वर्ग वाले देवों की कौन कौन सी लेशा होती है, उत्कृष्ट तेजो और जघन्य पद्म। हाँ जैसे नरक में वैसे, ये हमने कल पढ़ा था इसको, कल दोबारा पढ़ा भी था इसको, है ना। हाँ तो द्रव्य की भी ऐसी होगी, और अपर्याप्त अवस्था में तो हमने शुक्ल और कापोत होती है, और पर्याप्त अवस्था में ये दो होगी उत्कृष्ट तेजो और जघन्य पद्म, इसलिए चार कही।
दोनों जैसे सेम रहेगा
कहाँ,
सनत कुमार महेंद्र कुमार के ऊपर
नहीं, प्रत्येक स्वर्ग की अपनी अपनी, ये इसीलिए हमने इतने सात पॉइंट्स देखे थे ना, इसमें 536 पृष्ठ पर हमने जो सात अलग अलग देखे थे, प्रत्येक स्वर्ग की अपनी अपनी जो विशिष्ट लेशा होगी। हाँ दोनों मिलके चार लेशा, और ये भी सभी जीवों की मिलकर एक जीव की अपेक्षा एक लेशा होगी एट अ टाइम। अपर्याप्तों में भी पहले शुक्ल और बाद में मिश्र जब होता है तब कपूत। दोनों नहीं होगी, दोनों कैसे, क्योंकि एक लेशा कहीं वो तो तेजो होगी या तो पद्म होगी, तो उसमें एट अ टाइम भी होगी और जो है वही होगी, वो बदलेगी नहीं, लाइफ टाइम वही रहती है, देवों में लेशा वही रहती है, वो बदलेगी नहीं। उसमें तरतमता हो सकती है पर वो तेजो ही रहेगी। अब यहाँ ऐसे ना ऊपर के पटल और नीचे के पटल, उसमें भी बहुत पटल होते हैं स्वर्गों में, तो सनत कुमार महेंद्र तो इन जनरल टर्म हो गई, तो ऊपर भी सेंटर वाला विमान होता है, बाजू के विमान होते हैं, तो उसमें ये समझ लेना कहीं भी ये दोनों में से कोई पाई जाएगी। हाँ द्वितीय ऑप्शन श्रेणी चढ़ता है। व्हाट क्षायिक, देखो क्षयोपशमिक जीव श्रेणी चढ़ने के पहले द्वितीय उपशम कर देता है और द्वितीय उपशम के साथ श्रेणी चढ़, तो अभी क्या, अभी आपका प्रश्न क्या है। हाँ वो जब नीचे उतरता है तभी क्षायिक हो जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है।
हाँ
देखो क्षायिक हो जाता है, क्षायिक के साथ जो श्रेणी चढ़ता है तो उसको हम द्वितीय उपशम नहीं कहेंगे, उसका सम्यक्त्व द्वितीयोपशम है क्या नहीं इसकी बात चल रही है, सम्यक्त्व क्षायिक है या द्वितीयोपशम है, और उसका चारित्र वो उपशम चारित्र यानी उपशम श्रेणी चढ़ रहा है। देखो फिर से उपशम श्रेणी चढ़ता है ने क्या करता है, चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का उपशम करते हुए ऊपर जाता है, और ये उपशम करते हुए ऊपर जाने वाला चारित्र मोहनी की उपशम ना करने वाला जीव, उसका सम्यक्त्व कैसे हो सकता है, या द्वितीय उपशम या क्षायिक। सम्यक्त्व और चारित्र से दो बातें हैं, सम्यक्त्व में भी औपशमिक और क्षायिक बनता है और चारित्र में भी औपशमिक क्षायिक बनता है, तो चारित्र मोहनी का उपशम करेंगे तो उसको कहेंगे वो उपशम श्रेणी, और चारित्र मोहनी की क्षपणा करने वाला वो तो क्षायिक सम्य दृष्टि ही होना चाहिए, क्योंकि वो नो रिटर्न है ना, तो वो क्षायिक समय दृष्टि जीव क्षपक श्रेणी चढ़कर चारित्र मोहनी की क्षपणा करता है, क्षय करता है, तो 12वें के बाद 13वें में पहुंच जाता है। अभी क्या प्रश्न है आपका फिर, कंफ्यूजन। देखो आपका प्रश्न है द्वितीय उपशम के साथ जो श्रेणी चढ़ता है उसमें क्षायिक होने का सवाल ही नहीं है, उपशम श्रेणी चढ़ रहा है और उसका सम्यक्त्व भी द्वितीयोपशम है। क्या क्षायिक रहता है? या द्वितीयोपशम रहेगा या क्षायिक रहेगा। एक जीव में औपशमिक सम्यक्त्व है तो उसको क्षायिक सम्यक्त्व कैसे हो सकता है उसी समय, ख्याल है ना? और ये क्षायिक बनने का कार्य भी श्रेणी में नहीं हो सकता यदि आप वैसा चाहते हैं तो, क्योंकि जो क्षायिक कौन हो सकता है? द्वितीय ऑप्शन में से डायरेक्ट कोई नहीं हो सकेगा, क्षोपशम में से ही क्षायिक होता है, एक बात। और वो कार्य कहाँ शुरू होता है या कहाँ होता है? तो चौथे पांचवें छठे सातवें में, ये दो बातें हमने देखी। तो द्वितीय ऑप्शन वाला श्रेणी चढ़ता है, अब वो बीच में क्षायिक होने का कार्य नहीं करेगा।
डॉक्टर साहब आप एक बात ध्यान रखिए, जो उपशम श्रेणी है वो उपशम श्रेणी वाला जो चढ़ने वाले जो जीव है उसमें दो भेद हो सकते हैं। एक जो क्षावशम सम्यक्त्वी है वह दोबारा उपशम सम्यक्त्वी होगा, उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी कहेंगे। वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ यानी उपशम सम्यक्त्व के साथ ही ऊपर चढ़ेगा, उसमें आप जैसा चाहते हैं क्या समझते हो वैसा क्षायिक नहीं होगा। अब या तो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जाएगा ऊपर या तो क्षायिक सम्यक दृष्टि ऊपर जाएगा, यानी उपशम श्रेणी चढ़ेगा। अब जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है वो चारित्र मौनी की उपशम ना करेगा, और जो द्वितीय उपशम सम्यक है वो भी उपशम ना करेगा, और दोनों नीचे आएंगे। लेकिन ये क्षायिक वाला जो है वो अधिक से अधिक नीचे जो है कम से कम यानी चौथे गुणस्थान तक आएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। और वो हो सकता है कि मिथ्यात्व में भी जावे। अभी जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जो है वह छठे सातवें में रह जाए और फिर वहाँ उसका उग्र पुरुषार्थ हो जाए तो वहाँ वो क्षायिक सम्यक्त्व को भी प्राप्त करेगा और उसी भाव में क्षायिक श्रेणी मानकर भी ऊपर जा सकता है।
सम्यक प्रकृति का, हाँ। देखो क्या होता है, आपका प्रश्न मुझे ख्याल में आया। अभी जो कोई सम्यक दृष्टि जीव है, कौन सा? क्षोभशम सम्यक दृष्टि, तो उसकी पोजीशन मैंने यहाँ लिखी है, जो गुलाबी लिखा है ये तो दर्शन मुनि की तीन, और यहाँ जो पीला दिखाया है ऊपर ऐसी लाइन, वो पूरा ही चारित्र मोहनीय समझ लेना अभी समझने के लिए, उसमें वो 21 प्रकृति है। अब क्या होता है, यहाँ उदय तो सम्यक प्रकृति का चल रहा है और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व थोड़ा ऊपर है, उदय में नहीं है। जो उदय होता था तो उस रूप होकर उदय में आता है। अब खाली अकेले सम्यक प्रकृति का उपशम करके काम नहीं चलेगा। अब कोई कहते कि एक प्रकृति का उपशम करता है तो बिल्कुल सर्वथा गलत बात है। तो क्या होता है, ये तीनों का ही उपशम करके ये बहुत बड़ा गैप कर देता है बीच में। दर्शन मोहनी में बहुत बड़ा गैप हो गया तीनों में ही अंतर करके। पहले अंतर नहीं था, पहले जो उपशम था ना क्षोपशम अवस्था में, वेदक सम्यक्त्वी वाले को उपशम था उसको सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। अब जब द्वितीय उपशम किया उसने, क्षोपशम में से द्वितीय उपशम किया, तो तीनों ही प्रकृतियों में बहुत बड़ी गैप कर दी, और गैप के ऊपर जितने परमाणु है सबको उपशमित किया, वो नीचे नहीं आ सकते ऐसे वहां उसको लॉकअप में डाला सबको। ये सब बहुत सारी प्रकृति अंदर है, बराबर। अब ये पोजीशन है, नीचे है ये सम्यक प्रकृति का उदय होकर इतना अंतर्मूर्त है, वहां तक वो क्षोपशम सम्यक जो रहेगा, और इतना रहे मिट जाने के बाद अभी वो औपशमिक सम्यक दृष्टि हो गया। यहाँ चारित्र मोहनी का उदय चल रहा है, उसका एक वेद भी है और संज्वलन क्रोधमान माया भी, उसका भी उदय चल रहा है, बराबर। और बाकी अंदर प्रकृति पड़ी है, 21 प्रकृति पड़ी है। अब ये जो यहाँ से लेकर ये ऊपर तक सम्यक्त्व संबंधी उपशम है, दर्शन मोहनी का उपशम है, इसको हम द्वितीय उपशम सम्यक्त्व कहते हैं। अब इस काल में ये जो चारित्र मोहनी का उदय चल रहा है, अब ये इतने गैप के काल में, दर्शन मोहनी में जो गैप पड़ा उसी काल में चारित्र मोहनी में भी गैप होगा। ये गैप इससे थोड़ा छोटा है, द्वितीय उपशम का गैप बहुत बड़ा है, और उससे चारित्र मोनिय का गैप कम है। तो चारित्र मोनिय में गैप हो गया तो क्या होगा, ये नीचे प्रथम स्थिति और ये ऊपर द्वितीय स्थिति। अब क्रम से द्वितीय स्थिति में जो कर्म परमाणु सभी पड़े हैं, पहले वेदों का उपशम होगा, फिर छह नौकषाय का होगा, फिर पुरुष ये पुरुषवेद का उसके साथ होगा, फिर क्रोध का, फिर मान का, फिर माया का, इस तरह से सभी कर्म उपशमित हो जाएंगे। पूर्ण उपशम होगा तब ग्यारहवा गुणस्थान आएगा। अब ये ग्यारहवें गुणस्थान में ये पोजीशन है ना, चारित्र मोहनी है यहाँ, ये तो दर्शन मोहनी चलाई गई है ना, यानी यहाँ द्वितीय उपशम सम्यक तो चल रहा है और उसी काल में चारित्र का भी उपशम हुआ, उपशांत कषाय कहते हैं। फिर क्रम से जो उपशमित हुए वो एक एक करके उदय में आना शुरू हो जाएगा, उल्टे क्रम से उदय आएगा। पहले सूक्ष्म लोभ का उदय होगा, फिर ये दसवें, फिर नौवें, फिर आठवें, फिर सातवें, इस तरह से वो नीचे तक आए। और तब तक ये गैप चल ही रही है, तब तक उसका द्वितीय उपशम सम्यक तो चल ही रहा है क्योंकि ये गैप बड़ी है। यानी चारित्र मोहनी का उपशम करके फिर रेगुलर छठे सातवें में उसका उदय प्रारंभ होगा, तब भी ये दर्शन मोहनी के तीन अभी उपशमित ही है। और थोड़ा उसका ये बड़ा अंतर्मूर्त है इससे, तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तब वापस ये द्वितीय उपशम में से सम्यक प्रकृति का उदय होगा और फिर द्वितीय उपशम में से क्षोपशम सम्यक दृष्टि हो जाएगी। हाँ, अभी आपका क्या प्रश्न? हाँ, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव कौन सी श्रेणी चढ़ता है? उपशम के क्षपक। हाँ, उपशम चढ़ेगा तो अभी उसमें क्या होगा, क्षायिक सम्यक दृष्टि में दर्शन मोहनी की प्रकृति ही नहीं है, उसकी अकेले एक चारित्र मोहनी की प्रकृति है। दर्शन मोहनी है ही नहीं उसके, तो वो क्या करेगा, चारित्र मोहनी में पहले अंतर करेगा और ऊपर की जो प्रकृतियां है वो क्रम से उसका नाश करता जाएगा। नपुसक वेद चला जाएगा, फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद, सब जो अभी हमने जिस ऑर्डर से उपशम, सॉरी आप उपशम की बात करें तो अभी उपशम का प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस। फर्क कितना है, इसने द्वितीय उपशम ने गैप कर दिया दर्शन मोहनी में, और क्षायिक वाले के सत्ता में दर्शन मोहनी है ही नहीं है, उसने तो संपूर्ण सत्ता में से नष्ट कर दिया है। हाँ, द्वितीय ऑप्शन सातवें गुणस्थान में होता है ना, हमने तो पहले देखा था, जब सातवें के दो भाग है ना, सातिशय अप्रमत्त, जिसको अधः प्रवृत्त करण कहते हैं, श्रेणी के पहले पहले, तो उस काल में उसका द्वितीय ऑप्शन होता है। क्षोपशम सम्यक तो में से द्वितीय ऑप्शन सम्यक तो होता है और फिर वो श्रेणी चढ़ने के काबिल होता है, क्योंकि वो पूरी बड़ी गैप के बिना चारित्र मोहनी में फिर गैप अंतर करना और उसका उपशम करना ये कार्य नहीं होता। यानी उपशम चारित्र मोहनी के उपशम ना करने का कार्य दोनों का सेम है, क्षायिक हो या औपशमिक हो। औपशमिक वाले को भी दर्शन मोहनी का कोई उदय नहीं है क्योंकि उसने तो बड़ा गैप कर दिया है, अंतर कर दिया है, और क्षायिक वाले के तो सत्ता में है ही नहीं है, उसने तो क्षय ही कर दिया है। तो दोनों की क्या है पोजिशन, चारित्र मोहनी की सेम है, डिफरेंस कहाँ है, दर्शन मोहनी में डिफरेंस है। फिर भी उदय की तरफ देखो तो दोनों का ही उदय नहीं है, अनुदय है ना। औपशमिक वाले ने उसको उपशमित कर दिया इसलिए उदय नहीं है, और क्षायिक वाले ने क्षय ही कर दिया इसलिए उसका उदय नहीं है। यानी अभी देखना कहाँ रहा, चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का वो क्या करता है, तो दोनों ही जीव उसका उपशम करते हैं, क्षायिक वाला हो या औपशमिक वाला, उनका चारित्र मोहनी में जो उपशमना होती है वो सेम होगी। यही प्रश्न था ना आपका? हाँ, आ गया उत्तर। हाँ ठीक है, और जब क्षय होगा, क्षपक श्रेणी चढ़ेगा, तो ये हमने यहाँ उपशम देखा तो वहां क्षय करेगा। कहाँ तक आए थे हम? हाँ, सामान्य हो गए। अब सानत कुमार महेंद्र देवों के पर्याप्त आलाप लगाना है। विनोद भाई आप लगाएंगे? गुणस्थान चारों, हाँ, जीव समास पर्याप्त, पर्याप्ति छह, पर्याप्ति 10, प्राण हाँ चार, संज्ञा देवगति पंचेंद्रिय जाति त्रस का है, हाँ नव योग पुरुषवेद। देखो ये ख्याल में रखना है, अभी हमने सामान्य भी देखा और यहाँ भी सनत कुमार महेंद्र और ऊपर सभी ये पुरुषवेद कषाय चार, ज्ञान छह हो, हाँ तीन ज्ञान तीन अज्ञान, क्योंकि हमने चारों ही गुणस्थान देखे यहाँ है ना, दर्शन हाँ संयम असंयम हाँ तीनों दर्शन, अभिलेषा द्रव्य की कितनी होगी, हाँ पर कितनी है कितनी है और कौन सी है, हाँ हाँ दो है, कौन सी दो होगी, हाँ उत्कृष्ट पीत और जघन्य पद्म, द्रव्य की भी और भाव की भी, बहुत अच्छा। भव्य के अभव्य दोनों है, हाँ सम्यक्त्व छह है, संगी हाँ आहारक और उपयोग दोनों है। अभी इसी के अपर्याप्त लगाने हैं, सानत कुमार और महेंद्र में, मयंक भाई आप लगाएंगे, हाँ गुणस्थान एक दो और चार, बहुत अच्छा। देखो तीसरे को लेना नहीं है, अशोक भाई जरा ख्याल लेना, आप नए हैं ना, अपर्याप्त यानी तीसरे में मरण नहीं होता है, इसलिए अपर्याप्तों में तीसरा गुणस्थान नहीं लेते। जीव समास संगी अपर्याप्त पर्याप्ति छह अपर्याप्ति सात प्राण चार संज्ञा देवगति पंचेंद्रिय जाति त्रस काय हाँ दो योग वेद एक हाँ पुरुष वेद एक कषाय हाँ ज्ञान हाँ दो कूद ज्ञान और तीन सूद ज्ञान। ये क्यों विभंग ज्ञान को नहीं लिया, अपर्याप्त अवस्था में कु अवधि ज्ञान नहीं होता है, परंतु जो सम्यक दृष्टि है ना चतुर्थ गुणस्थान से मरकर आया है अभी देव में, तो उसको अवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था से ही है। हाँ असंयम तीन दर्शन, हाँ द्रव्य की कौन सी दो, हाँ शुक्ल और कापोत अपर्याप्त है, और भाव की कौन सी दो, बराबर उत्कृष्ट कौन सी तेजो हाँ पुत और जघन्य पद्म, यानी यहाँ द्रव्य की और भाव की में डिफरेंस है अपर्याप्त अवस्था में, ख्याल है ना, हाँ हाँ भव्य अभव्य सम्यक तो कौन कौन से हो गए, मिथ्यात्व सासादन तीनों औपशमिक क्षयोपशमिक और क्षायिक, संगी आहार अनाहारक दोनों और उपयोग दो। देखो आहार अनाहारक क्यों कहा, कारमान का योग है तब अनाहारक है विग्रह गति में, और मिश्र का योग होता है तो आहारक बन जाता है, इसलिए अब इस तीनों को हम पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। सनत कुमार और देखो पेज नंबर 563 नीचे का पैराग्राफ, सनत कुमार और महेंद्र ये तीसरा और चौथा स्वर्ग है, ये जोड़ी जोड़ी में क्यों ले गया, क्योंकि ये दक्षिण उत्तर एक ही लेवल पर होते हैं, हम क्या कहें एक दो तीन चार ऐसे ग्रेवे कैसे एक के ऊपर एक है, वैसे ये नहीं है, पहला दूसरा स्वर्ग इस तरह से जोड़ी में है, एक दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर, दक्षिण में कौन सा है और उत्तर में कौन सा है, हाँ बोलो अश्विन भाई, यहाँ अपने स्वर्गों की बात बहुत बार हुई है, हाँ पहले पहला जो नाम आता है वो दक्षिण में लेना, दक्षिण के खाते में ज्यादा स्वर्ग रहते हैं, यानी वो जो स्वर्गों के विमान है ना एक तो सेंटर में होता है और पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर उसके श्रेणीबद्ध विमान होते हैं, अब दक्षिण का अधिपति है पूर्व और पश्चिम सब उसके उसके अधिपत्य में होते हैं, और इस एंगल से लेकर ऊपर ये सभी उत्तर की ओर है, यानी ईशान वाले के सौधर्म वाले के पास 32 लाख विमान है तो ईशान वाले के पास 28 लाख ही है, और सभी दक्षिण के इंद्र जो है वो अगले भव में मोक्ष जाने वाले हैं, सभी दक्षिण के इंद्र एक भव अवतारी है। उत्तर के नियम नहीं है दक्षिण के अंदर, दक्षिण के इंद्र के अंदर है वो। ये सौधर्म की बात। ऊपर ऊपर विमानों की संख्या सौधर्म ईशान, अभी एक लेवल पर है ना, एक सतह पर है। फिर सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, एक लेवल पर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र ऐसे शतार सहस्रार वगैरह। देखो सनत कुमार महेंद्र स्वर्गों के देवों के सामान्य आलाप कहने पर, अभी इसको पढ़ते, आदि के चार गुणस्थान संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, ये दो जीव समास, छह पर्याप्तियां छह अपर्याप्तियां, दशो प्राण सात प्राण, चारों संज्ञाएं देवगति पंचेंद्रिय जाति त्रस काय, चारों मनोयोग चारों वचन योग वैक्रिक का योग वैक्रिक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये ग्यारह योग दोनों के मिलाकर के है पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त के नौ है और अपर्याप्त के दो है। पुरुष वेद, ये ख्याल में रखने की बात है, सनत कुमार महेंद्र से पुरुष वेद होगा। चारों कषाय तीनों अज्ञान और आदि के तीन ज्ञान, ये छह ज्ञान। असंयम आदि के तीन दर्शन। द्रव्य से अपर्याप्त काल में कापोत और शुक्ल लेशा तथा पर्याप्त काल में उत्कृष्ट पीत और जघन्य पद्मलेशा। भाव से उत्कृष्ट तेजोलेशा जघन्य पद्मलेशा। अपर्याप्त हो तो भी यहाँ वही लेशा होगी भाव की जो पर्याप्त अवस्था में होती है। भवनत्रिक में हमने देखा था वो उल्टा होता है, वहाँ तो पर्याप्त अवस्था में पीत लेशा रहती जघन्य तेजोलेशा और अपर्याप्त अवस्था में तीन अशुभ लेशा होती है। बाकी यहाँ ऊपर के सभी स्वर्गों में अपनी अपनी जो लेशा होगी पर्याप्त की वही अपर्याप्त की भी होगी। बहुव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, छह सम्यक्व सौनिक आहारक अनाहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। उन्हीं सनत कुमार महेंद्र देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर आदि के चार गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तियां, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति पंचेंद्रिय जाति त्रस काय, चारों मनोयोग चारों वचन योग वैक्रिक का योग, ये नौ योग। पुरुष वेद, चारों कषाय तीनों अज्ञान और आदि के तीन ज्ञान, ये छह ज्ञान। असंयम आदि के तीन दर्शन। द्रव्य और भाव से उत्कृष्ट तेजोलेशा और जघन्य पद्मलेशा। भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, छह सम्यक्त्व सौनिक आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अभी इसी के अपर्याप्त के देखेंगे हम। उन्हीं सनत कुमार महेंद्र देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि, ये तीन गुणस्थान, तीसरे को नहीं लिया अपर्याप्त है इसलिए। एक संगी अपर्याप्त जीव समास, छह अपर्याप्तियां, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति पंचेंद्रिय जाति कौमा देना वहां त्रस काय वैक्रिक मिश्र का योग और कारमाण योग, ये दो योग, कारमाण योग कहो या कारमाण का योग कहो एक ही बात है। पुरुष वेद, चारों कषाय कुमति और कुश्रुत, ये दो अज्ञान, आदि के तीन ज्ञान, ये पांच ज्ञान। असंयम आदि के तीन दर्शन। द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशा, अब ये द्रव्य और भाव में डिफरेंस आ गया, और भाव से उत्कृष्ट तेज और जघन्य पद्म लेशाएं। भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्व के बिना पांच सम्यक्त्व, सौनिक आहारक अनाहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब ये तो हमने सामान्य भी देखे, पर्याप्त भी देखे, अपर्याप्त भी देखे। अब इन्हीं सनत कुमार महेंद्र में एक एक गुणस्थान देखेंगे। तो पहले गुणस्थान उसमें कितने हो गए, पर्याप्त हो गए कि अपर्याप्त हो गए? दोनों हो गए। और सासाधन में दोनों है ना, दोनों और एक सामान्य, ऐसे तीन तीन लगेंगे। और सम्यक मिथ्यात्व में एक लगेगा, और फिर चौथे वाले में दोनों लगे, पर्याप्त अपर्याप्त और सामान्य, ऐसे तीनों ही आलाप लगाए। इस तरह से अभी हम ये गुणस्थान देखेंगे उसमें। तभी सनत कुमार महेंद्र देवों के मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर, अच्छा उन्होंने समान लिख दिया है, अच्छा पढ़ते हम, पहले इसको पढ़ेंगे। सनत कुमार महेंद्र देवों के मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान तक चारों गुणस्थानों के आलाप सौधर्म देवों के आलापों के समान जानना चाहिए। अभी हमने आगे नहीं पढ़ा, विशेषता कहाँ होगी? वेद में, एकमात्र पुरुष वेद होगा यहाँ, हाँ, और लेशा उनकी अपनी अपनी होगी। तो विशेषता केवल इतनी है कि ऊपर सभी कल्पों में, कल्प कहो या विमान कहो, ये कल्पवासी कहते ना, कल्प तो 16वें तक कहते और उसके ऊपर कल्पातीत कहते हैं। तो सभी कल्पों में यानी सभी अभी ऊपर के सभी देवों में स्त्री वेद नहीं है, अतः एक पुरुष वेद ही कहना चाहिए। उसमें भी ओघालाप कहते समय जब ये आलाप कहेंगे तो उसमें द्रव्य से कापोत शुक्ल और उत्कृष्ट तेज और जघन्य पद्म लेशाएं कहना चाहिए। यानी सौधर्म ईशान और इसमें क्या डिफरेंस है लेशा में, अभी हमने देखा था। भाव से उत्कृष्ट तेज और जघन्य पद्म लेशाएं कहना चाहिए, और वहां कौन सी देख रहे थे हम? जघन्य तेजो लेशा देख रहे थे, मध्यम तेजो लेशा देख रहे, बहुनत्रिक में जघन्य तेजो लेशा देख रहे। पर्याप्त काल में द्रव्य और भाव से उत्कृष्ट तेज और जघन्य पद्म लेशा होती है, उन्हीं के अपर्याप्त काल में द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं और भाव से उत्कृष्ट तेज और जघन्य पद्म लेशाएं होती है, इतनी विशेषता है। इतनी विशेषता लेकर उन्होंने छोड़ दिया। तो अभी यहाँ सानत कुमार महेंद्र में सम्यक्त्व का लगाना है अपने को, हाँ यानी चौथा गुणस्थान। मंजू बेन आप लगाएंगे चौथा गुणस्थान,
चौथा गुणस्थान
पर्याप्त का लगाओ।
समास पर्याप्त,
हाँ
छह पर्याप्त,
हाँ दस प्राण,
चार
संज्ञा,
देवगति,
पंचेंद्रिय,
त्रस्काय, योग नौ,
नव योग,
पुरुष वेद,
चार कषाय,
ज्ञान तीन सुज्ञान,
हाँ तीन सुज्ञान, हाँ
संयम
असंयम,
दर्शन तीन,
लेशा कौन सी होगी?
द्रव्य से,
हाँ द्रव्य से उत्कृष्ट पीत और
जघन्य
पद्म,
हाँ
भाव से भी वही, हाँ
भव्य
के अभव्य,
भव्य,
हाँ सम्यक तो कौन कौन से हो गए?
हाँ
औपशमिक, शाउपशमिक और
शाही,
संगी, आहारक,
हाँ
हाँ। अब जो अपर्याप्त तो होगा उसमें सम्यक तो कौन कौन से हो गए? तीनों है, द्वितीय ऑप्शन वाला है ना, हमारा औपशमिक हमने खाली कहा, प्रथम ऑप्शन तो होता ही नहीं अपर्याप्त में, तो द्वितीय ऑप्शन वाला जा सकता है। कल हमने देखा था द्वितीय ऑप्शन वाला जिस लेशा में मरता है वैसे वैसे वहाँ वो पहले स्वर्ग से ऊपर के स्वर्ग तो कहीं भी जन्म ले सकता है वो। अब आगे है ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की बात करेंगे। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ और शुक्र महाशुक्र, ये छह लिए, तीन जोड़ी लिए, यानी पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां, इन देवों के आलाप सनत कुमार देवों के आलापों के समान समझना चाहिए। विशेषता कहाँ होगी?
लेशा
में। अब तो पुरुष वेद भी वही है, यानी सौधर्म ईशान और इसमें तो ये डिफरेंस था वेद में भी और लेशा में भी, अब यहाँ तो लेशा का डिफरेंस होगा। विशेषता यह है कि सामान्य से आलाप कहने पर द्रव्य से कापोत शुक्ल मध्यम पद्मलेशा होती है। अब यहाँ मध्यम पद्मलेशा लेने, ये छहों ही स्वर्गों में मध्यम पद्मलेशा लेने, तथा भाव से केवल मध्यम पद्मलेशा होती है, उन्हीं देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य और भाव से मध्यम पद्मलेशा होती है। कोई भी गुणस्थान हो वहाँ का, तो वहाँ तो मध्यम पद्मलेशा होगी, पर्याप्त होंगे तो मध्यम पद्मलेशा, द्रव्य की भी और भाव की भी, और अपर्याप्तों में हाँ द्रव्य की शुक्ल का पोत और भाव की मध्यम पद्म, ये इतना ही डिफरेंस है नीचे के और उसमें। ये पढ़ा ना मैंने भी विशेषता, हाँ अगले पेज पर। उन्हीं के अपर्याप्त काल में द्रव्य से कापोत और शुक्ललेशा तथा भाव से मध्यम पद्मलेशा होती है, इतनी मात्र विशेषता है, यही डिफरेंस है, बाकी तो सभी गुणस्थान ऐसे हो गए, उसमें पर्याप्त पर्याप्त के आला भी वैसे ही हो गए। अभी उसके बाद शतार और सहस्रार, शतार और सहस्रार वो 11वां और 12वां स्वर्ग है। तो शतार सहस्रार कल्पवासी देवों के जो आलाप है वो ब्रह्मलोक के आलापों के समान समझना चाहिए। अभी उसमें क्या डिफरेंस होगा फिर, लेशा में, यहाँ की लेशा कौन सी होगी, हाँ अभी उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल, जब उत्कृष्ट और जघन्य उसकी तो जोड़ी एक साथ हम कहेंगे, मध्यम वाला अकेला होगा और जघन्य वाला नीचे वाले के साथ है, पीत में उसका नीचे कोई है नहीं तो जघन्य हम कहते, फिर मध्यम, फिर उत्कृष्ट जघन्य, फिर उसका पद्म का मध्यम, फिर उसका उत्कृष्ट जघन्य, फिर मध्यम का शुक्ल और उत्कृष्ट शुक्ल। देखो विशेषता यह है कि उनके सामान्य से आलाप कहने पर द्रव्य से कापोत शुक्ल उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल लेशा होती है, ये दोनों सामान्य में कहेंगे तो पर्याप्त के भी और अपर्याप्त की भी बता दिए, तथा भाव से उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल लेशा होती है, वो तो दोनों में कॉमन है, पर्याप्त में भी वही है अपर्याप्त में भी वही है। उन्हीं देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य और भाव से उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल लेशाएं होती है, उन्हीं के अपर्याप्त काल में द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं होती है, तथा भाव से उत्कृष्ट पद्म और जघन्य शुक्ल लेशाएं होती है। अभी आनत प्राणत आरण अच्युत, ये कौन से स्वर्ग हुए, 13, 14, 15 और 16, तथा देखो आगे ये नाम बताएं, सुदर्शन अमोघ सुप्रबुद्ध यशोधर सुभद्र सुविशाल सुमनस सौमनस और प्रीतिंकर, इन चार कल्पों और 9 ग्रहवेक। पहले आनत प्राणत आरण अच्युत, इसको तो कल्प कहा, 16वें स्वर्ग तक तो कल्प कहते हैं, और ऊपर के जो स्वर्ग है उसको कल्पातीत देव कहते हैं। तो ये जो 9 ग्रहवेक है उनके नाम बताए क्रम से, देखो नीचे से ऊपर तक, सुदर्शन अमोघ सुप्रबुद्ध यशोधर सुभद्र सुविशाल सुमनस सौमनस और प्रीतिंकर, ये 9 ग्रहवेक है, और पहले 4 हमने 13, 14, 15, 16 ये देखे थे। ये जो 13 कल्पों के आलाप, इसको भी कल्प ही कहा है, ठीक है, इन 13 कल्पों के आलाप शतार सहस्रार देवों के आलापों के समान समझना चाहिए। विशेषता यह है, ये 13 लिए ना, तो अभी इसमें कौन सी लेशा होगी, मध्यम शुक्ल। विशेषता यह है कि सामान्य से आलाप कहने पर द्रव्य से कापोत शुक्ल और मध्यम शुक्ल, क्योंकि अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों लिया, तथा भाव से मध्यम शुक्ल लेशा होती है। उन्हीं देवों के पर्याप्त काल में द्रव्य और भाव से मध्यम शुक्ल लेशा होती है, उन्हीं के अपर्याप्त काल में द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशाएं तथा भाव से मध्यम शुक्ल लेशा होती है। अब अगला वाला आलाप कहेंगे, यहाँ मात्र लेशाओं में ही डिफरेंस है, बाकी तो सभी आलाप समान है। अब किसका नंबर आएगा, हाँ 9 अनुदिश, अनुदिश यानी सेंटर में एक विमान है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में एक एक यानी 4, और आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान में एक एक यानी वो 4, 9 होते हैं, उसको 9 अनुदिश कहते हैं। वो एक लेवल पर है, एक सतह पर है, 9 सेंटर में एक और बाजू में 9, 8, हाँ। तो उनके नाम लिखे, अर्ची अर्चिमालिनी वज्र वैरोचन सौम्य सौम्य रूप अंक स्फटिक और आदित्य, हाँ अर्ची, इन नौ अनुदिश विमानों के तथा अभी अनुत्तर के भी नाम कहेंगे तथा विजय वैजयंत जयंत अपराजित, जयंत के बाद कौमा करना, और सर्वार्थ सिद्धि इन पांच अनुत्तर विमानों के आलाप कहने पर, ये 14 हुए ना, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर, एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, क्या डिफरेंस हुआ, नौ ग्रहवेग तक तो चारों ही गुणस्थान लिए थे, अब ऊपर एकमात्र चौथा गुणस्थान, ये विशेषता ख्याल में रखना है। संगी पर्याप्त और संगी अब, अच्छा वो लगाए उन्होंने, अच्छा हम भी लगाएंगे, चलो अरविंद भाई आप बताना, ऊपर के जो अभी नौ अनुदिश और जो पांच अनुत्तर है उनके आलाप अभी हम देखने जा रहे हैं, बाकी बीच बीच में तो लेशा का डिफरेंस था वो तो हम देख के आए। हाँ गुणस्थान चौथा, संगी पर्याप्त और अपर्याप्त, पर्याप्ति छह, पर्याप्ति छह, अपर्याप्ति प्राण दस और सात, संज्ञा चारो, देवगति पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय योग ग्यारह, एक पुरुष वेद, चारों कषाय, तीन ज्ञान असंयम, तीन दर्शन, लेशा सामान्य आलाप है नहीं है, हाँ द्रव्य की दो और एक, द्रव्य कौन सी दो, कापोत शुक्ल और शुक्ल, यानी दो ही कहेंगे, तीन भी कह सकते हैं कापो शुक्ल और शुक्ल, परंतु वो तो शुक्ल ही हो गया ना, हाँ शुक्ल में उत्कृष्ट कह सकते हैं आप, हम उत्कृष्ट शुक्ल और भाव से उत्कृष्ट शुक्ल, हमने वो बीच वालों में मध्यम लिया था, भव्य हाँ सम्यक तीनों, संगी हाँ आहारक दोनों, आहारक अनाहारक और उपयोग दोनों, अभी इसी में अपर्याप्त आलाप लगाना है, हाँ गुणस्थान चौथा, संगी अपर्याप्त, छह अपर्याप्ति, सात प्राण, चार संज्ञा, देवगति पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय दो योग, पुरुष वेद चार कषाय, हाँ तीन, तीन सुज्ञान असंयम, दर्शन तीन, हाँ कापोत और शुक्ल और हाँ उत्कृष्ट शुक्ल, हाँ भव्य तीनों सम्यक तो, संगी आहारक अनारक उपयोग दोनों, अभी हम पढ़ेंगे पर्याप्त,
अपर्याप्त में हमने दो ही लिए और पहले में तीन लोग लिए
थे, हाँ अपर्याप्त में तो कापोत और शुक्ल दो ही होते हैं और वहाँ तीन इसलिए लिए कि पर्याप्त काल और अपर्याप्त काल, सामान्य में हमने तीन लिखे थे कापोत शुक्ल और उत्कृष्ट शुक्ल, ऐसा उन्होंने भेद किया उसमें, पर्याप्त का तो वैसा ही है, आप ही बताओ पर्याप्तों में सम्यक्तों में हाँ क्या होगा, यहाँ अपर्याप्त में औषम, बहुत अच्छा अपर्याप्त में औषमिक लेना, प्रेरणा बिना पर्याप्त का सम्यक तो बताओ, नौ अनुदिश विमानों में पर्याप्त जीवों में कौन कौन सा सम्यक्त्व होगा, आप क्या कहते हैं मयंक भाई, अभी आप चुप बैठना आज अनुपस्थित है ना, हाँ तीनों रहते हैं, अच्छा पिनांग में आप क्या कहते हैं, हाँ
दो रहेगा, लेकिन अभी वो मालूम,
हाँ दो रहेगा, हाँ कौन से दो रहेगा, तीन में से कौन से दो रहेंगे, शाव शमी कर क्षायिक क्यों? क्योंकि द्वितीय उपशम तो अपर्याप्त अवस्था में है, पर्याप्त अवस्था में होते तो वो क्षय उपशमिक हो जाता है। देखो हाँ, क्योंकि प्रथम उपशम तो वहाँ उत्पन्न नहीं होगा। प्रथम उपशम के लिए कंडीशन क्या है? मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, और वहाँ तो सारे सम्यक दृष्टि जन्मते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है पर्याप्त में, हमने देखा नहीं था। देखो यहाँ सम्यक में पेज नंबर 569 वाले कॉलम, अभी हम पढ़ेंगे सब क्रम से, पर उसमें सम्यक वाला कॉलम देखना। क्षायिक और क्षयोपशमिक दो ही है, मिला क्या सबको? इस तरह से विचार करना है हमको। जो द्वितीयोपशम के साथ मरकर गया था, उसके अपर्याप्त काल पूरा होने के पहले पहले वो द्वितीयोपशम में से क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो जाता है। द्वितीयोपशम का जो सम्यक्त्व का काल है वो छोटा है, क्योंकि ये मरण कहाँ तक हुआ? कहीं भी होगा ना, ऊपर के गुणस्थानों में, यानी श्रेणी में मरण हुआ है इसका, श्रेणी में मरण हुआ है। तो श्रेणी में मरण हुआ है तो हमने देखा था द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाला श्रेणी चढ़कर उतर के नीचे आएगा, चौथे तक, चौथा पांचवा छठे सातवें तक मरण होगा, तो पहले स्वर्ग से ऊपर कहीं ना कहीं उसका जिस लेशा में मरा है तो वहाँ उसका जन्म हुआ, और जो ऊपर दसवें में मरे, ग्यारहवें में, तो शुक्ल लेशा में ही मरते, उत्कृष्ट शुक्ल में, तो वो नियम से ऊपर अनुदेश अनुत्तरों में जन्मते हैं। अपर्याप्त काल में उनका औपशमिक काल पूरा हो जाता है, द्वितीय उपशम में से वो क्षयोपशम हो जाते हैं, यानी उनका द्वितीय उपशम पर्याप्त काल तक चला रहे ऐसा नहीं होता। इसलिए पर्याप्त अवस्था में दो ही सम्यक्त्व, ख्याल में नौ ग्रेवेक तक हमने पर्याप्त में द्वितीय उपशम लेना ही नहीं, किसी भी स्वर्ग की बात है। पर्याप्त में जो हम औपशमिक सम्यक तो पकड़ते हैं, तो कहाँ तक लेते हैं उसको, कौन से स्वर्ग तक? पर्याप्त अवस्था में हम औपशमिक लेते हैं तो वो प्रथम उपशम सम्यक तो है। तभी मेरा प्रश्न है, कौन से स्वर्ग तक पर्याप्त अवस्था में प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त होगा? प्रथम उपशम की मैं बात पूछ रही हूँ। नौ ग्रेवेक तक, क्योंकि वहां तक मिथ्या दृष्टि जीव है, यानी ग्रेवेक में जाते समय तो मिथ्या तो अवस्था में गया, और वहां जाके सम्यक तो प्राप्त किया। ऐसे भी कितने जीव है, असंख्यात जीव हो गए ऐसे भी, हर एक स्वर्गों के हमने पहले एक बार
प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त करने के लिए प्रायर कंडीशन वह जीव मिथ्या दृष्टि रहना चाहिए। तो मिथ्या दृष्टि कहाँ तक जाएंगे? तो नौवे गेवे तक प्रथम उपशम सम्यक तो वहाँ पर्याप्त अवस्था में होगा।
देखो यानी कैसे मजे की बात, नौवे ग्रेवेक में कौन जाते हैं? जो मिथ्यात्व अवस्था में जाएंगे तो द्रव्यलिंगी, जिनेन्द्र भगवान ने जैसा मुनि का स्वरूप कहा है आचर बाह्य, तो वैसे बाह्य में उनके जिनके है 28 मूल गुण, वही उत्कृष्ट सहनन वाला जीव, चौथे काल वाला मुनि नौवे ग्रेवेक तक जाएगा। यानी वहां गया तो मिथ्यात्व में गया, यहाँ मुनिपद लेके भी वहां मिथ्यात्व में गया, और वहां इतने भोग है, इतना सब है, तो वहां जाके उसने सम्यक तो प्राप्त किया, ऐसे भी होता है ना? यानी क्योंकि हम क्या समझते हैं, अरे बाह्य त्याग लेंगे तो जल्दी जरा सम्यक तो प्राप्त होगा, ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग का हो या नरक का हो, संयोग उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हमें ऐसा लगता है अरे हमारे बहुत संयोग प्रतिकूल है, हम कैसा प्राप्त करेंगे? ये संयोग कहीं बाधक नहीं है, या अपनी संयोगों में जो रुचि है वो बाधक है। वो एक पंडित जी आए थे यहाँ, वो अध्यात्म स्टडी सर्कल में वो प्रवचन देने आते ना, तो वहाँ यूपी के थे, वो यूपी के है, वो गांव में रहते हैं, तो वहाँ तो शांत सब माहौल है, तो कहते कैसे आप बॉम्बे में रहते हैं, नरक जैसा ही है। तो हमने बोला नरक ही अच्छा है, क्योंकि संयोगों में हमें रुचि नहीं रहती है। स्वर्गों के देव जो है वो संयोगों में रुचि होती है, नारकियों के संयोगों में रुचि नहीं होती है। देखो अभी हम इसको पढ़ेंगे, हमने कहाँ डिफरेंस है उसकी बात देखी थी। अब ये जो पेज नंबर 567 हाँ हाँ, ये बीच में केवल लेशाओं में डिफरेंस है। देखो 566 के नीचे लाइन, इन सबके नाम यहाँ हमने अभी पढ़े थे, अर्ची अर्ची मालिनी वज्र वैरोचन सौम्य सौम्य रूप अंक स्फटिक आदित्य, इन नौ अनुदिश विमान, और अभी पांच अनुत्तर बताएंगे, विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार सिद्धि, पांच अनुत्तर विमानों के आलाप कहने पर तभी हम इसको पढ़ेंगे। एक अविरत सम्य दृष्टि गुणस्थान, एकमात्र गुणस्थान है यहाँ, संगी पर्याप्त संगी अपर्याप्त दो जीव समास, छह पर्याप्ति छह अपर्याप्तिया, दशो प्राण सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, वो ग के ऊपर बिंदी हुई है शायद वो निकाल देना, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग, वैकरेक का योग, वैकरेक मिश्र का योग और कारमाण का योग, ये ग्यारह योग, पुरुष वेद, चारों कषाय आदि के तीन ज्ञान, असंयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से अपर्याप्त काल में कापोत और शुक्ल लेशा तथा पर्याप्त काल में उत्कृष्ट शुक्ल लेशा, ये डिफरेंस किया उन्होंने, भाव से उत्कृष्ट शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन सम्यक्त्व, सौनिक आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। उन्हीं नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानवासी देवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्तियां, दशो प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, चारों मनोयोग, चारों वचन योग और वैकरिक का योग, नौ योग, पुरुष वेद, चारों कषाय आदि के तीन ज्ञान, असंयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य और भाव से उत्कृष्ट शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, कॉमा देना उसमें। अभी पर्याप्त लिया है ना, तो देखो औपशमिक सम्यक्त के बिना दो सम्यक्त होते हैं, अभी हमने इसकी चर्चा की थी, शंका, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानों के पर्याप्त काल में औपशमिक सम्यक्त किस कारण से नहीं होता, उसका समाधान, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानों में विद्यमान देव तो औपशमिक सम्यक्त को प्राप्त होते नहीं है, क्योंकि वहां पर मिथ्या दृष्टि जीवों का अभाव है। प्राप्त होना यानी नया प्राप्त करना, तो नया कौन करेगा प्राप्त प्रथम ऑप्शन, तो जो मिथ्या दृष्टि है। शंका, भले ही वहां मिथ्या दृष्टि जीवों का अभाव रहा आवे, किंतु यदि वहां रहने वाले देव औपशमिक सम्यक्त को प्राप्त करे तो इसमें क्या विरोध है, उसका समाधान, ऐसा कहना भी युक्ति युक्त नहीं है, युक्ति युक्त यानी युक्ति संगत नहीं है, न्याय से उसके जो रूल्स है नियम है उसमें फिटने बैठ, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अव्यवहित पूर्व नियम से मिथ्यात्व होता है, अव्यवहित पूर्व यानी निश्चित रूप से पूर्व में मिथ्यात्व ही होता है। ये बहुत रूल यहाँ इन्होंने पहले बार प्रथमोपशम का नाम लिया, नहीं तो औपशमिक औपशमिक कहते, प्रथमोपशम सम्यक्त्व के अव्यवहित पूर्व इमीडिएट पूर्व में क्या होता है, नियम से मिथ्या तो होता है। इस कषाय प्रावृत के गाथा सूत्र के साथ पूर्वोक्त कथन का विरोध आता है, क्योंकि वहां पर सभी सम्य दृष्टि जन्मते हैं और प्रथमोपशम के पहले नियम से मिथ्या दृष्टि होता है, ये सूत्र है, और वहां कोई मिथ्या दृष्टि है नहीं है, इसलिए वहां प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं पाया जाएगा। यदि कहा जाए कि अनुदिश और अनुत्तर विमानों में रहने वाले वेदक सम्यक दृष्टि जीव औपशमिक सम्यक्त को प्राप्त होते हैं, सो भी बात नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि औपशमिक सम्यक्त प्राप्त करते हैं वो प्रथम ऑप्शन, और जो क्षयोपशमिक है हमने देखा था श्रेणी के पहले द्वितीय ऑप्शन करते हैं, तो यहाँ प्रश्नकार का प्रश्न है कि वो वेदक में से औपशमिक करे क्या क्या यानी उसमें क्या नुकसान है, उसमें क्या दोष है, सो भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य गति के सिवाय अन्य तीन गतियों में रहने वाले वेदक सम्यक दृष्टि जीवों के दर्शन मुनि के उपशमन करने के कारणभूत परिणामों का अभाव है। ऐसी विशुद्धि वहां नहीं पाई जाती कि जो दर्शन मुनि का फिर से ये उपशम यानी वो अंतरकरण रूप उपशम करे। वो तो हमने देखा था साती छह अप्रमत्त वाला श्रेणी के सन्मुख श्रेणी चढ़ने के पूर्व ही ऐसा पुरुषार्थ होता है। यदि कहा जाए कि वेदक सम्यक दृष्टि के प्रति मनुष्यों से अनुदिशादि विमानवासी देवों की कोई विशेषता नहीं है, अतएव मनुष्यों के समान क्या कहते हैं कि मनुष्य और जो अनुदिश है उनमें वो विशुद्धि समान हो सकती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा यदि कोई कहता है मनुष्य वेदक सम्यक दृष्टि और अनुदिश वाला सम्यक दृष्टि ये दोनों समान है, यदि ऐसा कोई कहता है तो उसकी बात करेंगे। फिर पढ़ते इसको, यदि कहा जाए कि वेदक सम्यक दृष्टि के प्रति यानी क्षोभम सम्यक दृष्टियों में मनुष्यों से अनुदिशादि विमानवासी देवों के कोई विशेषता नहीं है, यानी उसमें सम्यक्त्व की अपेक्षा से उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, अतएव मनुष्यों के समान अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवों में दर्शन मोहिनी के उपशमन करने के योग्य परिणाम नियम से होना चाहिए, सो भी कहना युक्ति संगत नहीं है। उसके एक एक शंका जो है उसके रूल आउट करते हैं। कोई ऐसा मानता है कि वेदक सम्यक दृष्टि चाहे वो अनुदिश वाला हो अनुत्तर वाला हो या कोई मनुष्य हो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ भी दर्शन मोहिनी की फिर से उपशमना होनी चाहिए, तो वो भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि संयम धारण करने की तथा उपशम श्रेणी के समारोहण कहो या आरोहण करो एक ही बात, उपशम श्रेणी के समारोहण आदि की योग्यता मनुष्यों ही के होने के कारण अनुदिश और हुआ है वो उसको और करो। अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवों में और मनुष्यों में भेद देखा जाता है, यानी वो मनुष्यों में और उनमें क्या डिफरेंस है, तो मनुष्यों में तो संयम धारण करने की भी योग्यता है और उपशम श्रेणी चढ़ने की भी योग्यता है, वह योग्यता देवों में नहीं होती। तथा उपशम श्रेणी में मरण करके औपशमिक सम्यक्त्व के साथ देवों में उत्पन्न होने वाले जीव औपशमिक सम्यक्त्व के साथ छह पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाते, ये आपके प्रश्न का उत्तर आया। उसका अंतर्मूर्त छह पर्याप्तियों के अंतर्मूर्त से छोटा है। जो उपशम श्रेणी में जो मरा है इतने ऊपर जन्मने वाला उपशम श्रेणी में मरता है, नीचे चौथे पांचवें छठे सातवें में नहीं मरा है। तो यहां मरने वाले जीव के अभी जो उपशम काल कितना बचा है उसका, वो पर्याप्तियों से छोटा है। इसका अर्थ ये जो औपशमिक है ना, द्वितीय उपशम में से वो क्षोपशम हो जाता है और बाद में छह पर्याप्ति पूरी होती है। हाँ, वो बहुत छोटा काल है श्रेणी का। हमने पहले अल्प बहुत्व सीखे थे जब सपनासार और ये लब्धिसार पढ़ा था, बहुत अल्प काल होता है वो। जब आएगी ना आगे अंत अल्प बहुत्व आदि काल प्ररूपणा आगे आएगी, हमने वो है ना सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन सब बातें आने वाली है, तो वहां पता चलेगा कि हमें तो लगता है बापरे आठवां गुण स्थान नौवा दसवा ग्यारहवा सबका मिलकर भी काल बहुत छोटा है। लिखा है ना, देखो यार, देखो उपशम श्रेणी में मरण करके औपशमिक सम्यक्त के साथ देवों में उत्पन्न होने वाले जीव औपशमिक ये देवों में ही नियम से उत्पन्न हो गए। द्वितीय उपशम वाले जीव मरकर देवों में ही उत्पन्न हो गए, अन्य किसी गति में जाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, मेरा प्रश्न है अन्य तीन गतियों में क्यों नहीं जाएंगे? किसकी विच्छित्ति? देखो मेरा ऐसा प्रश्न है, उपशम श्रेणी वाला जीव मरकर देवों में ही क्यों जाता है, अन्य तीन गतियों में क्यों नहीं जाता? हाँ जरा विचार करो, आपको मालूम है सबको ये रूल, बहुत बार इसको हमने चर्चा की थी। हाँ देवायु भी बांधिए तो क्या हुआ, कोई मनुष्य भी बांधे होगा तो किसी ने मनुष्याई बांधी हो तो भोग भूमि वाला तो वहां उपशमिक होगा ना, द्वितीय उपशम। भोग भूमि वाले मनुष्य के अपर्याप्त काल में द्वितीय उपशम होगा कि नहीं होगा? देखो ऐसा नियम है, जिसने मनुष्यायु, तिर्यंचायु और नरकायु बांधी है वो चौथे गुणस्थान के ऊपर का पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता, याद है? जिसने देवायु बांधी है वही उसी को पांचवा गुणस्थान छठा सातवा भी प्राप्त होगा। यानी पांचवा प्राप्त करने के पहले उसने देवायु बांधी होगी तो ऊपर का पुरुषार्थ करेगा, और जिसने आयु नहीं बांधी हो वो भी करेगा, वो तो मोक्ष तक का पुरुषार्थ करेगा, है ना? मगर बांधी हो या आयु तो देवायु होगी तो कोई उसको बाधा नहीं है, परंतु अन्य कोई भी आयु क्यों न बांधी हो। अभी श्रेणिक राजा क्षायिक समय दर्शन तो प्राप्त किया तो उसको मुनि होने में क्या बाधा थी? हाँ, नरकायु बांधी थी, वो कर ही नहीं सकता था, पांचवा गुण सानुव्रत भी नहीं धारण कर सकता था, उसके उस जीव के ऐसे परिणाम ही नहीं होते, ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, क्या ले ना? और बाद में तो ये तो समाज में तो ऐसे इतना जानते और आप दीक्षा क्यों नहीं लेते? क्या है? ये तो तत्व संबंधी अज्ञान है ये सब।
अशोक भाई बोल रहे हैं कि हम इधर आए तो हमारा बहुत नुकसान हुआ, हमने पूछा क्यों साहब, अरे हमारी सारी गलत फहमियां यहाँ दूर होते रही है, हम अच्छे थे जब गलत भ्रांति में थे।
देखो ये जब लौकिक में लोग ऐसे एक दूसरे से बातें करते ना, अपने मन कढ़ंत कल्पना से ऐसे कुछ कहते रहते हैं, तो ये सभी कल्पनाओं का निराकरण हो जाता है। हमें तो सत्य बात जाननी है, और यहाँ तो किसी को हम दूसरे को सिखाने नहीं जा रहे, ये हम ही पूर्व में जो हमारी भ्रांतियाँ थी या समाज में जो भ्रांतियाँ देखने में आती है, तो हमारा निर्णय पक्का होता जाता है कि ऐसा ही स्वरूप है। देखो ये इसकी बात हमने पढ़ी अभी फिर से, तथा उपशम श्रेणी में मरण करके, अभी हम पांचवी लाइन पर आए, औपशमिक सम्यक्त्व के साथ देवों में उत्पन्न होने वाले जीव औपशमिक सम्यक्त्व के साथ छह पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाते। ये 569 पेज का जरा पीछे रेफरेंस रखना। यानी इसका अर्थ क्या है, द्वितीय उपशम के साथ देवों में उत्पन्न होता है तो छह पर्याप्तियों का काल बड़ा है, और औपशमिक सम्यक्त्व का द्वितीय उपशम का काल छोटा है। अभी हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि वहां अपर्याप्त अवस्था में होने वाले औपशमिक सम्यक्त्व के काल से छह पर्याप्तियों के पूर्ण होने का काल अधिक पाया जाता है। कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है ना? यानी कहते तो हम अंतर्मूर्त, परंतु कौन सा अंतर्मूर्त बड़ा है छोटा है ये बात यहाँ क्लियर हो गई। इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवों के पर्याप्त काल में औपशमिक सम्यक्त्व नहीं होता। अभी विशेषार्थ इसी को दोबारा समझाते। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति मिथ्यात्व पूर्वक होती है, ऐसा आगम वचन है। ये तो हमने भी पहले देखा था, वो पंचलब्धि की पुस्तक में भी, और हमने चर्चा बहुत बार की है इसकी। और अनुदिश तथा अनुत्तर विमानवासी देव मिथ्या दृष्टि होते नहीं, इसलिए वहां प्रथमोपशम की प्राप्ति तो संभव नहीं। ये प्राप्ति की बात चल रही है, प्राप्ति यानी नया जो कोई वहां नहीं उत्पन्न होगा। कहां तक उत्पन्न हो सकता है प्रथम ऑप्शन? नवे ग्रह वेग तक, बरोबर। अब रही द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व की बात, तो यह वेदक सम्यक्त्व के उपशम श्रेणी के सन्मुख हुए मनुष्यों के ही संभव है। यह यानी ये जो द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व है वो कौन से मनुष्यों में हो सकता है? तो जो वेदक सम्यक दृष्टि है और द्वितीय वो किसके सन्मुख है? उपशम श्रेणी के सन्मुख है। उपशम श्रेणी के सन्मुख वाला क्षोपशम सम्यक दृष्टि जीव ही द्वितीय उपशम प्राप्त करेगा। हाँ, मनुष्य सन्मुख हुए मनुष्यों के लिखा ना, अन्य गतियों में नहीं। यानी द्वितीय उपशम सम्यक्त्व अन्य गति में तो होगा ही नहीं, मनुष्यों में भी किसके होगा? ऐसा क्षोभम सम्यक दृष्टि जो उपशम श्रेणी के अभी सन्मुख हो रहा है, यानी अभी सातवें अतिशय में आ गए, सातिशय में आ गया है, सातिशय अप्रमत्य में, और वहाँ वो द्वितीयोपशम करेगा। हाँ, भोग भूमि में मैक्सिमम गुणस्थान चार, मनुष्य हो या तिर्यंच हो, देव हो, सॉरी मनुष्य हो या स्त्री हो, यानी पुरुष हो या स्त्री हो, ये भोग भूमि का ऐसा ही नियम है। और वहां से एक ही रास्ता है स्वर्ग का। देखो, असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो असंख्यात द्वीपों में बीच वाले, पहले और लास्ट छोड़ दो, वहां कर्मभूमि है, बीच वाले कितने असंख्यात है। असंख्यात का अगर हम उसका वर्णन देखेंगे और उसके डायमेंशन देखेंगे तो कितना बड़ा है, तो इतने सभी तिर्यंच है, तो ये जघन्य भोग भूमि चल रही है। और ये सभी तिर्यंच कहाँ जाने वाले हैं? देव में। तो मनुष्यों को कितनी जगह मिलेगी? ये तो ज्योतिषी व्यंतर वगैरह भी बहुत है, भवन त्रिकमय भी बहुत जाते हैं, परंतु वहां भी समय दृष्टि कितने असंख्यात समय दृष्टि है, और वो तो ऊपर के स्वर्गों में जाएंगे, बीच वाले कहीं। और कर्मभूमि के भी तिर्यंच बहुत है जो पांचवें गुणस्थान तक जाने वाले। कैसे? असंख्यात द्वीप समुद्रों की जितनी डायमेंशन है उससे थोड़ी ज्यादा अंतिम समुद्र की डायमेंशन है, और उसमें तो कितने असंख्यात तिर्यंच है सम्यक दृष्टि, वहां कर्म भूमि है, वहां तो पांचवें गुणस्थान तक जाते हैं तिर्यंच, उनका भी स्वर्गों में नंबर लगेगा। और मनुष्य तो बहुत संख्यात है, पर्याप्त मनुष्य कितने संख्यात है, हाँ मिथ्या दृष्टि भी रहेंगे वहां कर्मभूमि वाले, वो तो सातवें नरक में भी जाएंगे। हम देखते हैं ना, वो इतने महामत्स्य है और वो तंदुल मत्स्य है, दोनों ही सातवें नरक में जाते हैं। कर्मभूमि के तिर्यंच है तो उन्हें तो चारों ही गतियां खुली है, परंतु बीच में सभी भोगभूमि वाले जो तिर्यंच है वो तो स्वर्गों में जाएंगे। बीच में तो जघन्य भोगभूमि है, और ये जो पांच है ना, पांच मेरु संबंधी जो, यानी ढाई द्वीप के अंदर वाले जो कुछ है, तो वहां भी वो जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट भोगभूमि है, तिर्यंचों की और मनुष्यों की कॉमन है वहाँ, ये मनुष्यों की अलग तिर्यंचों की अलग नहीं है। मानुषोत्तर के अंदर जितनी भोगभूमिया है, जघन्य भी है, मध्यम भी है, उत्कृष्ट भी है, हर एक मेरु संबंधी हमने देखे थे, प्रत्येक द्वीप के छह पर्वतों के द्वारा जो क्षेत्र होते हैं, तो नीचे और ऊपर भरत और ऐरावत, और बीच में जघन्य दोनों तरफ, फिर मध्यम दोनों तरफ और उत्कृष्ट दोनों तरफ, यानी मेरु के इमीडिएट उसके बाजू में उत्कृष्ट भोगभूमि होती है, दक्षिण और उत्तर ऐसी। उत्तर पूर्व नहीं, भोगभूमि उत्कृष्ट भोगभूमि में पहले काल, मध्यम भोगभूमि में दूसरा काल, जघन्य भोगभूमि में तीसरा काल, कर्मभूमि में चौथा और पांचवा काल, और अभी यहाँ तो छठा भी आएगा उसके बाद, विदेह क्षेत्र में चौथा है, भरत ऐरावत में छह काल हुए, और वो भी आर्यकंड में है ना, मलेंच में नहीं। वो चौथे में जो कम ज्यादा होता है उतना होता है ना, चौथा तो होगा क्योंकि चौथे काल के चक्रवर्ती जाते हैं ना वहां, मिलेंज कन्याओं के साथ शादी भी करते हैं, चौथा काल वा, चौथे में जितना मैं शुरू से अंत तक जो डिफरेंस है वैसा रहेगा, अभी मुझे पक्का मैं नहीं कहूंगी, अभी विद्याधरों के श्रेणी में भी वो रहता है, वो अप एंड डाउन उसमें भी होता है थोड़ा, वैसे मिलेंज में भी होना चाहिए ऐसे लगता है मुझे, देखना पड़ेगा, अभी इतने याद नहीं है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे द्वितीयोपशम की, यानी ये जो द्वितीयोपशम कौन करता है, क्षोभम सम्यक दृष्टि जीव जो उपशम श्रेणी के सन्मुख है वही क्षोभम में से द्वितीयोपशम होगा, तथा पूर्व पर्याय से आया हुआ द्वितीयोपशम सम्यक अपर्याप्त अवस्था में ही समाप्त हो जाता है, ये ऊपर की बात वो दोबारा समझा रहे ना। तो पूर्व पर्याय से आया हुआ है, पूर्व पर्याय कौन सी होगी और अभी कहाँ होगी, यानी पूर्व पर्याय मनुष्य होगी और अभी की देव होगी क्या? क्योंकि इस काल से छह पर्याप्तियों के पूरा करने का काल अधिक होता है, यानी द्वितीयोपशम का जो काल है और अभी छह पर्याप्तियों का पूरे करने का काल वो अधिक है। इस प्रकार इतने कथन से यह निष्कर्ष निकला कि नौ अनुदिश और पांच अनुत्तरों में मिथ्यात्व की प्राप्ति तो किसी प्रकार संभव नहीं है, यानी सम्यक्त्व के साथ जन्मता है पर बाद में कोई मिथ्यात्व हो तो भी नहीं पॉसिबल। इसलिए मिथ्यात्व की प्राप्ति का, यानी जीव सम्यक्त्व के साथ ही उत्पन्न होता है और सम्यक दृष्टि ही रहता है, वहाँ ना पहला गुण स्थान है दूसरा ना तीसरा, यानी उस सम्यक्त्व से भ्रष्ट होने का कोई सवाल नहीं है। भले क्षोभशमिक है फिर भी वो गिरेगा नहीं। जो द्वितीयोपशम जीव वहाँ उत्पन्न होते हैं वे नियम से वेदक सम्यक्त्व दृष्टि हुआ है, सम्यक दृष्टि होते हैं। हो जाते हैं, यानी द्वितीयोपशम में से या कोई भी ऑर्डिनरी औपशमिक प्रथम ऑप्शन भी है उसमें से क्षोभशम होता है ना, तो उसके लिए उसको कोई करण नहीं मानने पड़ते, वो नेचुरली इसका ये उपशम मिट जाता है और वो क्षोभशम सम्यक दृष्टि हो जाता है। वहाँ वेदक सम्यक दृष्टियों के द्वितीयोपशम सम्यक प्राप्ति संभव नहीं, क्योंकि इसकी प्राप्ति उपशम श्रेणी के सन्मुख हुए मनुष्यों के ही होती है, ऐसा समझना चाहिए। यही बात उन्होंने फिर यहाँ दोहराई है। ये बाकी तो आलाप अभी इसके आगे, सम्यक्त्व के आगे आलाप देखते हैं। सम्यक्त्व आलाप के आगे सौनिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अभी इन्हीं में अपर्याप्त काल संबंधी आलाप देखते हैं। अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी देवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, एक संघीय अपर्याप्त जीव समास, छह अपर्याप्तिया, सात प्राण, चारों संज्ञाएं, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, वैक्रिक मिश्र का योग और कारमान का योग, ये दो योग, पुरुष वेद, चारों कषाय आदि के तीन ज्ञान, असंयम आदि के तीन दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेशा अपर्याप्त है न, और भाव से उत्कृष्ट शुक्ल लेशा, भव्य सिद्धिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन सम्यक्त्व। यहाँ औपशमिक यानी वो द्वितीय उपशम वाला है। सौनिक, आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। इस प्रकार देवगति के आलाप समाप्त हुए, ये सभी देवों के आलाप यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अब सिद्धि गति के आलाप सिद्धों के ओघालाप के समान जानना चाहिए। तो सिद्धों में हम जरा लगाएंगे, जरा ब्रश अप हो जाएगा। सिद्धों में गुणस्थान कौन लगा रहे? हाँ, गुणस्थानातीत मुझे बेन बताना। जीव समास, अतीत जीव समास, पर्याप्ति अतीत, प्राण प्राण भी नहीं, वो ये द्रव्य प्राणों की बात नहीं हुआ। हाँ, संज्ञा, गति, गति भी अतीत, सिद्ध गति, इंद्रिया, अनिंद्रिया, हाँ इंद्रियातीत कहो, अनिंद्रिय कहो, या वो इंद्रिय मार्गना नहीं है वहाँ कोई, काय, अकाय, हम वेद, अपगत वेदी, सॉरी योग, योग अयोगी, बराबर, हाँ बराबर है, आपने बराबर कहा। वेद, अपगत वेद, कषाय, अकषाय, ज्ञान, संयम, हाँ अनुभव कहा था वो, संयम, असंयम, सेमा संयम से पार, दर्शन,
केवल दर्शन,
हाँ लेशा,
अलेश,
भव्य, अभी अनुभव यानी जीरो लिखना वहाँ, भव्य यानी सिद्ध हो चुके, अभी वो होने योग्य नहीं कहेंगे उनको, सम्यक,
क्षायिक,
सम्यक, सौनी, उससे रहित हाँ आहारक अनाहारक हाँ अनाहारक है ना और उपयोग युगपद दोनों बहुत अच्छा तो ये सिद्धों के आलाप इस प्रकार हुए इससे ये अभी गति मार्गणा समाप्त हुई एक एक मार्गणा में हमको ये 20-20 प्ररूपणा लगाने आसान है ना इंटरेस्टिंग है देखो अब इंद्रिय मार्गणा तो मुझे पहले बताओ इंद्रिय मार्गणा में कितने भेद किए थे हमने हाँ तेजू बहन बोलो कौन से भेद एक इंद्रिय बादर सूक्ष्म इसमें नहीं करना वो बादर सूक्ष्म करेंगे तो 7 जीव समास होंगे इंद्रिय मार्गणा में अभी हमने कितने गिनाते थे इंद्रिय मार्गणा में 1 है या 5 है ऐसा किए 5 है ना यानी एक इंद्रिय जाति कहना एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय ऐसे 5 भेद है और छठा सिद्धों का करना है तो वो इंद्रियातीत करना बिना इंद्रियों के परंतु यहाँ मूल ये 5 है और इसमें हम 20 प्ररूपणा लगाएंगे सिद्धों का आलाप तो हमने अलग ही रखा है ना उसको तो ये 5 यानी अभी एक इंद्रियों पर सभी प्ररूपणाएं लगेगी 20 प्ररूपणा एक इंद्रियों पर लगेगी तभी सोचना पड़ेगा कौन सी लेशा होगी कौन सा वेद होगा है ना हाँ योग कौन से हो गए अब इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे फिर आगे जाते हैं अच्छा लगाएंगे सामान्य एक इंद्रिय जीव लगाना है अभी हम अश्विन भाई को देंगे हाँ सीनियर है ना हमारे हाँ तो एक इंद्रियों में सामान्य ने पर्याप्त अपर्याप्त जो कुछ है वो सब आलाप लगाना आप गुणस्थान पक्का हाँ एक ही गुणस्थान जीव समास एक इंद्रिय पर्याप्त जीव समास के हमने 14 भेद किए थे उन 14 में से कितने भेद हो गए सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त बादर पर्याप्त अपर्याप्त देखो हमने जब जीव समास 14 देखे थे एक इंद्रिय में 2 डिफरेंस किए थे पहले ही पहले सूक्ष्म और बादर और उन दोनों के पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त इसलिए यहाँ 4 जीव समास लेने पड़ेंगे पर्याप्ति कितनी होगी एक इंद्रियों में कितनी होती है 4 बरोबर 4 पर्याप्तियां और 4 अपर्याप्तियां प्राण 4 और 3 बहुत अच्छा संज्ञा गति कौन सी है इतना सोचना पड़ा वही अच्छा इंद्रिय में अभी क्या लिखेंगे एक इंद्रिय हाँ एक है ना उसके एक जाति लिखने हमको हाँ काय में हाँ कितने लिखने काय के नीचे संख्या कितनी लिखनी है 5 यानी त्रस के बिना 5 ये षटकाय में से 5 काय किया है हाँ योग दोनों ही नहीं हाँ प्राण की मत कहो अभी पहले योग कहो एक एक होगा हाँ औदारिक औदारिक मिश्र और कर्म ये तिर्यंच है ना हाँ एक इंद्रिय तिर्यंच है वो ख्याल में नहीं आता ना हम तिर्यंच है ना वो पशु पंछी को इतना ही तिर्यंच समझते वो ऐसा होता देव में से एक इंद्रिय में जन्मते है जीव हमें तो खाली हम प्ररूपणा में आना है हमको तो हाँ देखो ये बात ख्याल में रखना अभी एक इंद्रिय से चतुर इंद्रिय तक नपुसक वेद है चारों कषाय ज्ञान 3 हो गए ना विभंग ज्ञान होगा एक इंद्रियों को पर्याप्त दशा में देखो अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान किसको होगा जिसके मन है उन्हीं के होगा, नहीं है आपको सब मालूम है अश्विन भाई, आज बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, जरा हेल्प करना प्रेरणा बहन। हाँ दो कूद ज्ञान, देखो कुअवधि यानी विभंग ज्ञान किसको होगा, बोले मिथ्या दृष्टि, परंतु संगी को ही होगा, संयम असंयम है। हाँ कौन से दो? चक्षु चक्षु है, कौन सा एक है? चक्षु, तो चक्षु अचक्षु दोनों ही दर्शन कौन से इंद्रिय वालों से शुरू होगा? हाँ तो तीन इंद्रियन तक हम एकमात्र चक्षु दर्शन, देखो ये अभी जो बारीकाई है ना यहाँ से शुरू हो जाती है, एक इंद्रियों में एकमात्र अचक्षु दर्शन है। लेशा द्रव्य की कितनी होगी? छ, और भाव की? तीन, बहुत अच्छा। भव्य अभव्य दोनों है, सम्यक्त्व मिथ्यात्व, संगी असंगी है, आहारक के अनारक दोनों, उपयोग कौन सा एक? ज्ञान दर्शन आपने दोनों बताए, ज्ञान दो और दर्शन एक बताया था आपने, है? उपयोगों की टोटल कितनी हुई? कैसे? ज्ञान दो उपयोग ये सबके लिए अच्छा है ना, आप जानते हैं मुझे मालूम है, ये पहले आपने सब सुलझाया हुआ है ना, तो अभी क्या है हमने देव में से आ गए है ना, पिनांग कैसा ना एकदम। डॉक्टर साहब अभी आप सामान्य इसमें एक इंद्रियों में पर्याप्त आलाप कहना, गुणस्थान जीव समास 14 में से कितने लेना अभी इसमें पर्याप्त में कौन सा? हाँ अशोक भाई कौन से दो? हाँ बादर पर्याप्त और सूक्ष्म पर्याप्त, दोनों के पर्याप्त लेना, बराबर पर्याप्ति चार पर्याप्ति बराबर, प्राण चार प्राण, संज्ञा चार, गति तिर्यंच गति, इंद्रिय में एक एक इंद्रिय, हाँ बराबर, काय स्थावर के पांच पांच भेद, भेद हमको गिनाने हैं तो यहाँ पांच प्रकार के है ना, पृथ्वी काय 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 के नीचे हमने षटकाय गिनाए थे, त्रस काय पूरे एक कैटेगरी में, और स्थावर काय में पांच भेद किए थे, वो पांच यहाँ पांच भेद कहना, एक स्थावर काय नहीं कहना, पांच स्थावर कहे, एक त्रस बिना, एक त्रस बिना पांच स्थावर काय, योग योग कितने हो गया अभी यहाँ, पर्याप्त जीव है एक इंद्रिय वाला, औदारिक का योग बरोबर, बहुत अच्छा, एक ही योग, हाँ वेद नपुसक वेद चारों कषाय, दोन कु ज्ञान, संयम असंयम, दर्शन एक अचक्षु, बहुत अच्छा, लेशा में द्रव्य की, द्रव्य की लेशा ने वर्ण कौन कौन से हो गए, सभी है ना, छह हो ले, हाँ और भाव की तीन अशुभ, भव्य अभव्य दोनों है, सम्यक्त्व मिथ्यात्व, सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व वाला भेद, संगी एक इंद्रिय जीव है असंगी बराबर, आहारक पर्याप्त चल रहा है आहारक है, और उपयोग दोनों है, अभी अपर्याप्तों के सामान्य केंद्रीय जीवों के अपर्याप्त आलाप आज हुआ ही नहीं नंबर आपका। हाँ हाँ, गुणस्थान, मिथ्यात्व, जीव समास 14 में से बताने। हाँ, सूक्ष्म अपर्याप्त, बादर अपर्याप्त, बहुत अच्छा। हाँ, पर्याप्ति कितनी होगी? 4 अपर्याप्ति। और प्राण 4 हमने पर्याप्तों में देखे थे, 2 नहीं हो गए। देखो, पर्याप्तों में 4 प्राण कौन से गिने थे हमने? एक स्पर्शन इंद्रिय प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास प्राण और आयु प्राण। इसमें से क्या नहीं होगा? श्वासोश्वास नहीं होगा। 3 प्राण है, 3 प्राण। 2 इंद्रिय तक 2-2 का डिफरेंस था पर्याप्त अपर्याप्त में, क्योंकि वहां वचन बल और श्वासोश्वास ऐसा 2 का डिफरेंस था। अब यह 1 का डिफरेंस था, प्राण हो गए। संज्ञा, गति, इंद्रिय, एक एक है। और काय 5, त्रस भी ना। हाँ, योग 2। देखो, अपर्याप्त में 2 है, पर्याप्त में 1 है। वेद, नपुसक, कषाय 4, ज्ञान 2, कुज्ञान, संयम असंयम कौन से 2? एक एक, एक दर्शन, अचक्षु दर्शन। हाँ, लेशा द्रव्य की 2, भाव की 3 अशुभ, बहुत अच्छा। भव्य की अभव्य, दोनों, बहुत अच्छा। सम्यक्त्व, संगी असंगी, आहारक दोनों, आहारक अनाहारक दोनों, और उपयोग भी दोनों। अभी हम पढ़ेंगे इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से आलाप मुह मूल ओघालाप के समान जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि अतीत गुणस्थान, अतीत जीव समास, अतीत पर्याप्ति, अतीत प्राण, सिद्धिगति, अनिंद्रिय, अकाय, संयम, संयमासंयम और असंयम, इन तीनों से रहित स्थान, भव्य सिद्धि और अभव्य सिद्धि रहित स्थान, इतने आलाप नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सिद्ध जीवों के एक इंद्रियादि जाति नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता है। यानी इंद्रिय मार्गणा में जाति नाम कर्म की अपेक्षा से 5 भेद करेंगे। ये सामान्य उघालाप में जो हमने सिद्ध केति का अलग आलाप निकाला था, वैसा यहाँ नहीं लेना है। सामान्य एक इंद्रिय जीवों के आलाप कहने पर जो अभी हमने देखा था, एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त, ये 4 जीव समास। मन पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति के बिना 4 पर्याप्तियां, 4 अपर्याप्तियां। पर्याप्त काल में स्पर्शनेन्द्रिय, काय बल, आयु और श्वास, श्वासोश्वास, ये 4 प्राण, और अपर्याप्त काल में श्वासोश्वास के बिना 3 प्राण। 4 संज्ञा, तिर्यंच गति, एकेंद्रिय जाति, 5 स्थावर काय, औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग और कारमाण कायोग, ये 3 योग, नपुसक वेद, 4 कषाय, कुमति कुशलते, ये 2 अज्ञान, असंयम, अचक्षु दर्शन। द्रव्य से 6 लेशा होती है, क्योंकि पृथ्वी और वनस्पति का एक जीवों के शरीर की अपेक्षा शरीर की 6 लेशाएं पाई जाती है। ख्याल है ना, पृथ्वी 6 कलर की पृथ्वी होती है, और ये सारे रत्न वगैरह है ना, कोई नील है, कोई 5 है, कोई पन्ना है, ये क्या है? ये 6 कलर में अनेक कलर होते हैं, तो ये उसमें 6 होते हैं। और वनस्पतियों में भी हम देखते हैं अलग अलग कलर की वनस्पति होती है। और भाव से कृष्ण नील कापोतलेशाएं, भव्य सिद्धि अभव्य सिद्धि, मिथ्यात्व असौनिक, आहारक अनाहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। उन्हीं सामान्य एकेंद्रीय जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर, एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, बादर पर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, ये 2 जीव समास, 4 पर्याप्तियां, 4 प्राण, 4 संज्ञा, तिर्यंच गति, एकेंद्रिय जाति, 5 स्थावर काय, औदारिक काय योग, नपुसक वेद, 4 कषाय, कुमति कुशलते, ये 2 अज्ञान, असंयम, अचक्षु दर्शन। द्रव्य से 6 लेशाएं, भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व असौनिक, आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। अब इसमें ये जो अलग अलग सामान्य एक इंद्रिय जीवों के उसमें फिर बादर वगैरह वगैरह जो है उसके हम कल देखेंगे। अपर्याप्तों के अलग अपर्याप्त के हमने लगाया था, अभी उसको कल लगाएं, पढ़ना है बाकी, पढ़ेंगे कल, लगाया था पढ़ना बाकी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका